पृष्ठ संख्या 30, 5। सिद्धों नाथों की ठेठ अद्वैत परंपरा के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति धारा का विकास इतिहासकारों को कुछ अटपटा लगता रहा है। यद्यपि उन्होंने अधिक ध्यान बराबर इस पक्ष पर दिया है कि वीर गाथा काल के बाद सहसा भक्ति भावना का उदय कैसे हुआ। अपने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में जयशंकर प्रसाद ने इस स्थिति की व्याख्या यह कहकर की है, दुखवाद जिस मनन शैली का फल था वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रक्रिया होनी ही चाहिए, फलतः पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। फिर कुछ व्यंग की मुद्रा में प्रसाद आगे कहते हैं, जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। कवि प्रसाद की यह व्याख्या आलोचक रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से एक स्तर पर जुड़ जाती है, जिसे उन्होंने अपने इतिहास में वीर गाथा काल कहा। वहां आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से मिलता है और फिर क्रमशः एक के बाद एक राजनैतिक सैनिक पराजय के क्रम में जातीय आत्मविश्वास भाव स्खलित होता जाता है और भक्ति भावना मुखर हो उठती है। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक प्राणकारी की आवश्यकता हुई, यो रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या और प्रसाद की दार्शनिक संदर्भ की व्याख्या एक दूसरे की पूरक बन जाती हैं। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। ग्रियर्सन की ईसाई प्रभाव वाली धारणा अब बहुत विचारणीय नहीं रह गई। हाँ, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्याओं में दृष्टिगत अंतर ध्यान देने योग्य है। आचार्य शुक्ल बाह्य इस्लामी तत्वों से क्रिया प्रतिक्रिया को अपने इतिहास संबंधी दृष्टि में बराबर महत्व देते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी की निगाह परंपरा के अपने विकास पर अधिक केंद्रित है। इन दोनों आचार्यों की विचारधारा का परीक्षण एक ओर उनकी इतिहास संबंधी समझ पर प्रकाश डालता है तो दूसरी ओर भक्ति काल के उदय की सामाजिक परिस्थितियों को आलोकित करता है। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में भक्ति के उदय की व्याख्या करते हुए इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि यह धारा एक रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। पृष्ठ 54। इस रूप में वे सामान्य जन में प्रचलित उक्ति भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद का वैदुषिक स्तर पर समर्थन करते हैं। इस्लाम की आक्रामक परिस्थितियों ने भक्ति के इस प्रभाव को तीव्र कर दिया, यह उनकी मूल मान्यता है। जयशंकर प्रसाद का विवेचन जैसा संकेत किया गया मूलतः दार्शनिक संदर्भ में हुआ है और इस विश्लेषण का साक्ष्य काफी दूर तक हमारा इतिहास प्रस्तुत करता है। विदेशी शासन के पूर्व हिंदी चिंताधारा के एकदम आरंभ में अद्वैत चिंतन की प्रमुखता थी, जो सिद्धों नाथों की वाणियों में सहज दृष्टव्य है। प्रायः एक सहस्त्र वर्षों की पराधीनता के लंबे क्रम के बाद 19वीं शती के पुनर्जागरण में अद्वैतवादी चिंतन पुनः केंद्रीय रूप में स्थापित होता है, जिसका प्रतिफलन प्रसाद निराला के काव्य में पृष्ठ संख्या 31 देखा जा सकता है, जिसे छायावाद रहस्यवाद संज्ञा दी गई। यों चिंतन का चक्र पूरा घूम जाता है। भक्ति काल के उदय की व्याख्या के प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि का अंतर बखूबी देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभिक अंश यों खुलता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यहाँ साहित्य की परिवर्तन प्रक्रिया के संदर्भ में संयुक्त क्रिया हो होता चला जाता है का प्रयोग बड़ा सटीक बन पड़ा है। आचार्य शुक्ल की आलोचना और इतिहास भाषा में वैसी ही सतर्कता दिखती है जैसी कि रचनाकारों की काव्य भाषा में। आज जबकि साहित्य इतिहास दर्शन हिंदी के आलोचकों और तथाकथित इतिहासकारों के बीच उत्तरोत्तर लोकप्रिय विषय होता जा रहा है और इतिहास लेखन उतना ही दुस्साध्य, तब यह देखकर बड़ा सुखद अचरज होता है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास दर्शन कुल इस एक वाक्य में समा गया है जिसका पूरा निर्वाह उनके विशद इतिहास ग्रंथ में हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रस्तावना इस प्रकार है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्रवृत्ति है तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग लोक चिंता का है। ऊपर से एक से दिखने पर भी दोनों प्रयोगों में गुणात्मक अंतर है। ऐसा नहीं कि शुक्ल जी लोक शब्द की छायाओं से परिचित नहीं थे। साहित्य के उद्देश्य के संबंध में वे बराबर लोक मंगल की बात कहते हैं, पर यहाँ उन्होंने जनता शब्द चुना है जो समाज के सभी वर्गों और समूचे जनजीवन को समेटता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द लोक है जो जनता के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग को संकेतित करता है। यूं द्विवेदी की चिंता समाज के पिछड़े वर्ग की ओर अधिक है, तब यह भी स्वाभाविक है कि आचार्य शुक्ल के मानक कवि जनता में प्रिय कवि तुलसी हैं, जबकि द्विवेदी के मानक कवि लोक में प्रिय कवि कबीर हैं। रामचंद्र शुक्ल साहित्य के व्यापक उद्देश्य के प्रसंग में लोक मंगल की बात कहते हैं, पर साहित्य की विकास प्रक्रिया के संदर्भ में जनता को महत्व देते हैं, जिसके अंतर्गत समाज के ऊंचे नीचे सभी वर्ग आ जाते हैं। इस्लाम का प्रभाव और संपर्क आरंभ में स्पष्ट ही उच्च और मध्य वर्ग से अधिक रहा, लोक तक छन कर पहुँचने में समय की लंबी अवधि अपेक्षित है। माना यह गया है कि विदेशी प्रभावों की आक्रामकता से बचने के लिए देशी संस्कृति प्रायः लोक का आश्रय लेती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विकास प्रक्रिया में लोक को केंद्र में रखते हैं, इसलिए विदेशी प्रभावों की सत्ता और सक्रियता उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। समूची जनता की दृष्टि सामने रखते हुए रामचंद्र शुक्ल इस्लामी प्रभाव की क्रिया प्रतिक्रिया का महत्व समझते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक चिंता की अपेक्षा में सब कुछ को मापते हुए लोक और उसकी जातीय परंपरा के विकास को ही केंद्र में रखते हैं। जनता और लोक के ये प्रयोग इन इतिहासकारों की दृष्टि का अंतर भली भांति परिभाषित करते हैं। इस संदर्भ में भक्ति के उदय की व्याख्या पर विचार करना समीचीन होगा। रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया को यहाँ पहला स्थान दिया है अपने इतिहास में, और भक्त कवियों के विवेचन में अन्यत्र भी वे हिंदुओं के पराभव और उससे उत्पन्न सांस्कृतिक संकट को भक्ति काल के विकास का प्रमुख कारक मानते हैं। महाकवि सूरदास, उनके द्वारा चर्चित तीन भक्त कवियों सूरदास, जायसी और तुलसीदास में कालक्रम से पहले आते हैं, अतः इस प्रसंग में उन्होंने भक्ति के उदय की व्याख्या देने का यत्न किया है। वे लिखते हैं, हिंदुओं के स्वातंत्र के साथ ही साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा चुकी। इस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते। जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। हृदय की अन्य वृत्तियों, उत्साह आदि के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर उनकी ओर वे न बढ़े। भगवान का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय था, केवल प्रेम था, पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी उसे हटाने में उपयोगी हुआ। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। महाकवि सूरदास त्रिवेणी। उद्धरण के अंतिम अंश का मित कथन जितना मार्मिक है उतना ही अर्थपूर्ण भी। हिंदू जिजीविषा के साथ भक्त कवियों का संबंध जोड़कर इतिहासकार ने इन कवियों के अद्वितीय महत्व की ओर संकेत किया है। वीर गाथा काल की जिजीविषा एक प्रकार की थी तो भक्ति काल की दूसरे प्रकार की। वीर और श्रृंगार से लेकर शांत तक की यह विकास यात्रा जैसे भर्तृहरि के तीन शतकों की बनावट के समानांतर चली हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आचार्य शुक्ल का उक्त विश्लेषण माने नहीं। हिंदी साहित्य की भूमिका में वे दिखाते हैं कि मध्यकाल की भक्ति रचनाएं, विशेषतः संत काव्य भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास हैं। भूमिका की निश्चित मान्यता है। बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। पृष्ठ 9-10। यानी द्विवेदी की धारणा यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक स्तरों में संक्रमित हुआ और धीरे धीरे निर्गुण तथा सगुण दोनों भक्ति धाराओं का प्रेरक तत्व बन गया। इसी सिलसिले में उन्होंने भक्ति साहित्य के विकास में इस्लाम के विशिष्ट प्रभाव को नकारा। भूमिका का ही अब प्रसिद्ध वाक्य है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। पृष्ठ 2। अपने एक अगले अध्ययन में आचार्य द्विवेदी ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के विकास के पीछे एक और तत्व रेखांकित किया है। उनका मानना है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के अंतिम अंश में वे लिखते हैं, अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। यद्यपि रीति काल में संस्कृत की प्रवृत्तियों को झिलाए रखा गया, पर भक्ति के आदर्श उसे भी चारित करते रहे। पृष्ठ 119। उल्लिखित पुस्तक का मूल विषय संपूर्ण भारतीय साहित्य का मध्यकाल है, जिसका विस्तार वे 9वीं से 18वीं शती तक मानते हैं। इस काल में समीक्षक परिलक्षित करता है कि भारतीय चिंता विवेक के स्थान पर रूढ़ी का समर्थन करती है। इस अवधि के उत्तरार्ध यानी 13वीं शती से द्विवेदी हिंदी साहित्य का मध्यकाल मानते हैं, जिसकी चर्चा भर छेड़कर वे प्रस्तुत व्याख्यानों का समापन करते हैं। इस तरह भक्ति काव्य पृष्ठ संख्या 33 के विकास के पीछे वे दो तत्व देख रहे हैं, एक तो बौद्ध चिंतन प्रक्रिया का विकास और दूसरे प्राकृत अपभ्रंशों की श्रृंगारिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया, और इन दोनों तत्वों को वे भारतीय लोक जीवन से जुड़ा हुआ मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास प्रक्रिया में जहाँ जनता को केंद्र में रखा था, वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को रखते हैं, और इस बल भेद से उनके विवेचन तथा निष्कर्ष में स्वभावतः गुणात्मक अंतर आ जाता है। तब इस्लाम के संबंध में द्विवेदी का मत है, हिंदी साहित्य में भी यह प्रभाव प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। पृष्ठ 29। यहाँ स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल संबंधी अपनी व्याख्या में इस्लाम के प्रति जो प्रतिक्रिया की बात कही थी, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी को स्वीकार नहीं है। अच्छा तो होता कि दो पंडितों के बीच के इस विवाद को यहीं छोड़ा जा सकता, पर एक तथ्य की ओर ध्यान दिलाए बिना यह प्रसंग अधूरा रह जाएगा। सूरदास विषयक अध्ययन करते समय विद्वानों ने प्रायः वल्लभाचार्य की इन पंक्तियों को उद्धृत किया है, देश मिलेच्छा क्रांत है, गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। भक्त कवियों के एक प्रमुख गुरु के सीधे साक्ष्य पर यों प्रतिक्रिया वाली व्याख्या पुष्ट होती है। अच्छा होगा कि प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों रूपों में इस्लाम की व्याख्या सहज भाव और अकुंठ मन से की जाए। तब आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के बीच दिखने वाला यह प्रसिद्ध मतभेद अपने आप शांत हो जाएगा। भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोक मूलक रूप है और प्राकृतों के श्रृंगार काव्य की प्रतिक्रिया है, तो इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक से बचाव की सजग चेष्टा भी है। इस्लाम की प्रतिक्रिया वाली रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या को कई बार अनजान में या कि शायद जानबूझकर विभ्रमित किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में और उनके योग्य शिष्य नामवर सिंह ने गुरु प्रसंग में लिखित अपनी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरियां न मिल पाने की चिंता के रूप में देखा है, और इस निमित्त से आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रसिद्ध पाश्चात्य कला आलोचक और इतिहासकार हेवेल की विचारधारा के साथ नक्की कर दिया है। हेवेल के मत का सारांश द्विवेदी ने यो प्रस्तुत किया है, भारतीय पांडित्य ईसा की एक सहस्राब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्रों में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न घटी होती तो भी वह इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेले लिए जा रही थी। उसका वक्तव्य विषय कथम अपि विदेशी न था। प्रोफेसर हेवेल ने अपने हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल में लिखा है कि मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते ही हिंदू राजकाज से अलग कर दिए गए, इसलिए दुनिया की झंझटों से छुट्टी मिलते ही उनमें धर्म की ओर जो उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल रह गया था स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ। यह गलत व्याख्या है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हमारे पाठक आगे के सहस्राब्दक की साहित्यिक चेतना को जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में देखें, अस्वाभाविक अधोगति के रूप में नहीं। पृष्ठ 14। हेवेल का उपर्युक्त सरलीकरण और उसमें निश्चित निहित दृष्टिकोण निश्चय ही गलत व्याख्या है, इसमें दो मत नहीं। पर हेवेल की विचारधारा में वल्लभाचार्य या रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रक्षिप्त करना भी कम गलत नहीं। हेवेल विदेशी इतिहासकार हैं, उसके लिए पृष्ठ संख्या 34। हिंदू जन का राजकाज से हटा दिया जाना धर्म को उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल छोड़ देता है, पर वल्लभाचार्य के लिए प्रश्न नौकरियों का नहीं हिंदू अस्मिता का है, और रामचंद्र शुक्ल के लिए उसके सूक्ष्म और निथरे स्वरूप संस्कृति का, जिसकी ओर आगे चलकर आधुनिक युग के तेजस्वी कवि निराला का ध्यान जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धृत हेवेल में जो आश्रय स्थल पद आता है वह ऊपर से एक सा दिखने पर भी वल्लभाचार्य द्वारा निर्दिष्ट कृष्णाश्रय से कितना भिन्न है गुणात्मक रूप में, यह इस संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। हेवेल और वल्लभ की व्याख्या में वही दृष्टि भेद है जो आगे चलकर 1857 को गदर और स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने के बीच है। जैसा संकेत किया जा चुका है, भक्ति काल के उदय की इस व्याख्या में अंतर का प्रमुख कारण रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच इतिहास दृष्टि का फर्क है। शुक्ल के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज का अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। समकालीन जीवन में भी इन दोनों शब्दों की ऐसी ही छायाएं जनता पार्टी और लोक दल के नामकरण में देखी जा सकती हैं। समाज के सभी वर्गों की क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान रखने के कारण रामचंद्र शुक्ल के लिए इस्लाम का आगमन उनके विवेचन में गुणात्मक महत्व रखता है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को केंद्र में रखते हैं, जहां इस्लाम का प्रभाव और उसके लिए क्रिया प्रतिक्रिया उतना महत्व नहीं रखती, वह केंद्र में नहीं हाशिए पर है। रुपये में 12 आना आज का 75 पैसा नहीं, 4 आना हो तो हो। सूर के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने समय में कृष्णाश्रय यानी कि भक्ति भावना की व्याख्या किस रूप में की है इसका उल्लेख हो चुका है। वह एक समकालीन का साक्ष्य है। आधुनिक काल के एक बड़े कवि और तुलसी प्रशंसक निराला तुलसी के उदय को किस रूप में देखते हैं, यह भी इस संदर्भ में विचारणीय है। विद्रोही स्वभाव के कवि निराला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण गायक तुलसी के प्रशंसक क्यों और कैसे हो जाते हैं, यह आलोचनात्मक जिज्ञासा का एक सर्वथा योग्य पर यहाँ अवांतर विषय है। लगता है कि तुलसी के निमित्त से इस क्यों और कैसे का ही समाधान निराला ने अपने काव्य तुलसीदास में दिया है। निराला मूलतः इतिहासज्ञ या प्रकरणकर्ता नहीं है, पर उनका साक्ष्य एक आधुनिक संवेदनशील कवि और सांस्कृतिक जीवन के सावधान अध्येता के रूप में महत्वपूर्ण है। तुलसीदास काव्य 100 छंदों में रचा गया है। आरंभ के 36 छंदों में यानी एक तिहाई से कुछ अधिक अंश में कवि निराला ने तत्कालीन जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। भारत के नभ का प्रभा पूर्य शीतलक छाय सांस्कृतिक सूर्य से आरंभ करके उमड़े भारत का भ्रम अपार हरने को तक, पहले छंद में ही निराला ने व्यक्त कर दिया है कि उनकी चिंता सांस्कृतिक स्तर पर है। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत का सांस्कृतिक सूर्य मंद पड़ गया है और इस्लाम की चांदनी फैल रही है। सूर्य और चंद्र हिंदू तथा इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं। आरंभ में मुगलों और पठानों के आक्रमण को वर्षा के रूपक में बांधा गया है। देश में राजनीतिक पराभव की इस वर्षा ऋतु के बाद सांस्कृतिक शिथिलता की शरद आती है। अब धौत धरा खिल गया गगन, उर उर को मधुर ताप प्रशमन, बहती समीर रचिर आलिंगन ज्यो उन्मन, झरते हैं शशधर से क्षण क्षण, पृथ्वी के अधरों पर निस्वन, ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन। यह अकबर का शासनकाल है, शांति और तथाकथित समृद्धि से भरपूर, जिसका संकेत छंद के ध्वन्यात्मक विधान से भी मिलता है, खास तौर से सैनिक आक्रमण वाले छंदों की ध्वनि प्रखरता की तुलना में। मोगल दल बल के जलदयान, दर्पित पद उन्मद नद पठान, है बाहर रहे दिग्देश ज्ञान, शर खरतर छाया ऊपर घन अंधकार, टूटता वज्र दह दुर निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धार, ध्वनि हर हर। और यही कवि की चिंता आरंभ होती है। राजनैतिक पराभव की वर्षा को लेकर वह उदास था, पर चिंतित नहीं। अब शरद की शांति और निश्चेष्टता में वह परेशान है। सूर्य और चंद्रमा, वर्षा और शरद के ऐसे प्रतीकात्मक तथा सटीक रूपक शायद ही अन्यत्र कहीं बांधे गए हों। हिंदू जीवन का सांस्कृतिक सूर्य मुसलमानी आक्रमण की तीव्र वर्षा में छिप गया है, और फिर धीरे धीरे इस्लाम की संस्कृति शरद चांदनी की तरह फैलने लगती है। निराला के तुलसीदास की चिंता राजनीतिक पराभव तथा राजपदों और नौकरियों से हटाए जाने की नहीं है, उनके लिए चुनौती इस्लामी संस्कृति को लेकर है, जिसे उन्होंने काव्य की एकदम आरंभिक पंक्तियों में व्यक्त कर दिया है। भारत के नव का प्रभा पूर्य, शीतलत छाये सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आजरे तमस सूर्य दिंग मंडल। यह तो उस समय हिंदू संस्कृति की स्थिति है, फिर पहले ही छंद के उत्तरार्ध में वे इस स्थिति के मूल कारण को स्पष्ट करते हैं। उर के आसन पर शिरस्त्राण, शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल निश्चलत प्राण पर शतदल। यह शतदल भी हिंदू जीवन के उत्फुल्ल प्रतीकों में से एक है, जो इस्लाम के शासनकाल में निश्चलत प्राण हो गया है। निराला यहाँ कहीं भी परिस्थिति को दबाते या छिपाते नहीं। उनसे ऊने कवि को इस काव्य के आधार पर सांप्रदायिक करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया होता, पर निराला अगर निडर नहीं तो कुछ भी नहीं। वे इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक को स्पष्ट देख रहे हैं, और इन्हीं परिस्थितियों के बीच वे तुलसी के कवि जीवन का उदय दिखाते हैं। वल्लभाचार्य ने तत्कालीन हिंदू धर्म की दुरावस्था का वर्णन किया था। निराला समग्र संस्कृति को मुरझाए कमल के रूप में अंकित करते हैं। जायसी ने पद्मावत में सहज अकुंठ भाव से हिंदू तुरक युद्ध का जगह जगह चित्रण किया है। निराला ने भी वैसे ही स्थिर मन से कहा, शासन करते हैं मुसलमान। तुल वल्लभ की पंक्ति मलेच्छा क्रांतेशु देशेशु, पृष्ठ संख्या 36, यह हिंदू अस्मिता के लिए संकट की घड़ी है। इस सांस्कृतिक संकट की चुनौती से जूझने को उद्यत होते हैं तुलसीदास। भक्ति काल के उदय को लेकर रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या का यह जैसे काव्यात्मक चित्रण निराला ने किया हो, इतिहासकार के दृष्टिकोण का जैसा पुष्ट समर्थन वल्लभाचार्य के प्रकरण ग्रंथ से होता है, वैसी ही मार्मिक सहमति उसे आधुनिक कवि निराला से प्राप्त होती है। हेवेल की सीधी सतही व्याख्या का संदर्भ भी यहाँ अप्रासंगिक जान पड़ता है। इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतभेद को लेकर कुछ चर्चा इतिहास विशेषज्ञ नामवर सिंह ने अपने इधर प्रकाशित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में की है। स्पष्ट ही उन्होंने अपने गुरु आचार्य द्विवेदी का पक्ष सिद्ध करना चाहा है। तर्क का रूप उन्हीं की शब्दावली में इस प्रकार है, यह सही है कि स्रोत के इन श्लोकों में एक जगह देश के म्लेच्छा क्रांत होने का उल्लेख है, और यदि म्लेच्छ को मुसलमान का वाचक मान भी लिया जाए तो उससे यहाँ कहाँ सिद्ध होता है कि गंगादी तीर्थों के भ्रष्ट होने, वेदों के अर्थ के तिरोहित होने, व्रतादिक सभी कर्मों के नष्ट होने, पाखंड पाप अज्ञान आदि के बढ़ने के लिए ये म्लेच्छ ही जिम्मेदार हैं, और इन्हीं के आक्रमण के कारण कृष्ण का आश्रय ढूंढा जा रहा है। वल्लभाचार्य के उपर्युक्त श्लोकों की नामवर सिंह द्वारा की हुई व्याख्या निश्चय ही विश्लेषण की अपेक्षा रखती है। दूसरी परंपरा की खोज पर लिखी हुई यह पुस्तक इन अंशों में स्वयं यह स्पष्ट भी करती चलती है कि दूसरी परंपरा को पहली परंपरा के पंडितों ने दबाया कैसे होगा। गला दबाती सहानुभूति का यह रोचक उदाहरण है। देश म्लेच्छा क्रांत है, म्लेच्छा क्रांतेशु देशेशु, यह इस प्रसंग खंड का उद्घोषक वाक्य है, जिसे नामवर सिंह यह कहकर हल्का करना चाहते हैं कि एक जगह देश के म्लेच्छा क्रांत होने का उल्लेख है। शायद गीत की टेक की तरह यदि इस वाक्य की बार बार आवृत्ति होती तो उन्हें समझ में आता कि सचमुच देश म्लेच्छ क्रांत है। काकुतर्क आगे बढ़ता है म्लेच्छ शब्द के अर्थ को लेकर। बड़ी कठिनाई से आलोचक मान पाता है कि म्लेच्छ का अर्थ मुसलमान हो सकता है। वल्लभाचार्य के समय में यवन ग्रीक शक हूण कोई भारत देश को आक्रांत नहीं किए थे, तब म्लेच्छ का एक ही और सीधा अर्थ होता है मुसलमान। यह सब आज अत्यंत अप्रिय प्रसंग लग सकता है, पर इतिहास हमारे प्रिय और अप्रिय लगने से नहीं बनता। इतिहास को दबाने और झुठलाने से वर्तमान अधिक अप्रिय हो सकता है, जो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है। मूल बात यह है कि आज इस्लाम के प्रति हमारा जो संतुलित ऐहिक दृष्टिकोण है वह मध्यकालीन जनजीवन में संभव नहीं था। इन दो परिस्थितियों के बीच लंबा इतिहास है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस्लाम इस देश में जब आया तो आक्रामक होकर, आज वह हमारे राष्ट्रीय जीवन का अंग है। इन दोनों बिंदुओं को समझकर ही इतिहास को वर्तमान में समरस किया जा सकता है। नामवर सिंह का सबसे रोचक तीसरा तर्क है, जहां वे कहते हैं तो उससे यहां कहां सिद्ध होता है कि गंगादी तीर्थों के भ्रष्ट होने आदि के बढ़ने के लिए ये म्लेच्छ ही जिम्मेदार हैं। वे पहले भी कह चुके हैं कि एक जगह देश के म्लेच्छ क्रांत होने का उल्लेख है। यदि वे देख पाते कि इस प्रसंग का प्रथम और उद्घोषक वाक्य है म्लेच्छ क्रांतेषु देशेषु, तो आसानी से समझ जाते कि इस वाक्य और अगले वाक्यों के बीच कारण कार्य संबंध स्थापित है, जिससे श्लोक के बीच में वाक्य विन्यास की दृष्टि से अतः जोड़ने की अपेक्षा नहीं रह गई है। स्वयं अपना निष्कर्ष नामवर सिंह इस प्रसंग में यूं प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मध्ययुग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। पृष्ठ संख्या 37। यह निष्कर्ष कितना नामवर सिंह के अपने तर्कों पर आधारित है और कितना मध्यकालीन साहित्यिक परिस्थिति पर, यह देखने की बात है। हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासौ हिंदी हिंदू मुस्लिम संघर्ष की गाथा है। हिंदी के पहले बड़े कवि कबीर के कृतित्व का एक बड़ा अंश इस संघर्ष को प्रशमित करने पर खर्च हुआ है। फिर हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य जायसी का पद्मावत इसी हिंदू तुरक द्वंद्व की कथा कहता है, और यह स्मरणीय है कि इन सभी प्रसंगों में सांप्रदायिकता की भावना कहीं नहीं है। न हिंदू कवि चंद बिरद्दिया में, न मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जायसी में, और ना हिंदू ना मुसलमान कवि कबीरदास में। यह हिंदी काव्य भाषा और साहित्य परंपरा की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिसका जन्म हिंदू मुस्लिम संघर्ष के साथ होता है और जो इस संघर्ष का अनेक रूपों में चित्रण करती है, पर जिसकी रचना में सांप्रदायिक दृष्टि का संस्पर्श भी नहीं होने पाता। विरोधों को साधना हिंदी भाषा की प्रकृति का अंग है, यह इस विवेचन के आरंभ में ही स्पष्ट किया गया है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष की वस्तु का हिंदी रचनाकार द्वारा सजग चुनाव इसके लिए एक और साक्ष्य प्रस्तुत करता है। पर नामवर सिंह इस परिदृश्य से मुंह मोड़कर रामविलास शर्मा और इरफान हबीब के विद्वत्तापूर्ण अध्ययनों के आधार पर सिद्ध करने को उत्सुक हैं कि मध्ययुग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। ऐसे आलोचक वस्तुतः हिंदू मुसलमान चर्चा आते ही परेशान होने लगते हैं। उनकी दृष्टि में यह चर्चा मात्र सांप्रदायिकता से प्रेरित और प्रभावित है। इस मनस्थिति में वे हिंदी भाषा और साहित्य के मूल असांप्रदायिक चरित्र की अवहेलना करते हैं या उस पर सच्चे मन से विश्वास नहीं कर पाते। वे यह नहीं देखते कि चंद या जायसी हिंदू मुस्लिम युद्ध का वर्णन करके भी कहीं पक्षधर नहीं होते, और कबीर तो इस पक्षधरता के ही सबसे बड़े विरोधी हैं। यही नहीं, आधुनिक काल के सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मुसलमान कवि जायसी यदि किसी से तुलनीय हैं तो गोस्वामी तुलसीदास से। इस प्रसंग में एक बात और ध्यान देने योग्य है। आदिकाल के कवि चंद या मध्यकाल में तथाकथित निर्गुण मार्गी कबीर और जायसी जगह जगह हिंदू और तुरक की चर्चा करते हैं, पर क्या वजह है कि सगुण भक्त कवि सूर और तुलसी के विशाल वाङ्मय में हिंदू या तुरक का प्रायः नगण्य प्रयोग मिलता है। कंस या रावण के चरित्र में वे आसानी से इस्लाम के अनुयायी बादशाह का चरित्र प्रक्षिप्त कर सकते थे, पर अपनी रचना के तन्मय भाव ने उन्होंने कहीं इस संघर्ष का उल्लेख तक नहीं किया। सगुण भक्ति और रचनाशीलता दोनों में तन्मयकारी तत्व है और जब भक्त कवि की रचना हो तो उसकी तन्मयता कई गुना बढ़ जाएगी, जो फिर रचना को भी समृद्धतर करती चलेगी। कृष्णाश्रय प्रयोग में वल्लभाचार्य का शायद ऐसा ही कुछ भाव रहा होगा। भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म शीर्षक अपने उपर्युक्त अध्याय का समापन नामवर सिंह ने एक गहरी जिज्ञासा के साथ किया है। इस जिज्ञासा का उन्होंने स्वयं कोई समाधान नहीं दिया, यद्यपि उनकी मुद्रा है कि जैसे वे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं पर अभी बताएंगे नहीं। वे लिखते हैं, यह भी एक विरोधाभास ही है कि शास्त्र सम्मिलित होकर साहित्य जिस मात्रा में सामाजिक दृष्टि से लोक विमुख तथा लोक विरोधी विचारों की ओर विचलित होता गया, काव्य भाषा तथा काव्य कला की दृष्टि से उसी मात्रा में समृद्धतर होता गया। कबीर से चलकर क्रमशः जायसी, सूर और तुलसी तक के विकास का मूल्यांकन इस पृष्ठ संख्या 38 दृष्टि से रोचक हो सकता है, किंतु यह प्रश्न न तो मुक्तिबोध ने उठाया है और न द्विवेदी जी ने ही, इसलिए महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रस्तुत प्रसंग में इसकी चर्चा अप्रासंगिक होगी। यहाँ पहुँच कर अध्याय समाप्त हो जाता है। नामवर सिंह यहाँ विचार, रचना, काव्य भाषा और काव्य कला को टुकड़ों में बांट लेते हैं, यानी साहित्य सहित भाव को राहित्य कर लेते हैं। फिर विचारों की प्रगतिशीलता और कला की श्रेष्ठता के बीच उल्टा अनुपात स्थापित होता है, जो विचारों की दृष्टि से जितना प्रगतिशील है कला की दृष्टि से उतना ही हीन। मुक्तिबोध और द्विवेदी जी दो पर ही नामवर सिंह की आस्था है, इन दोनों पर उनके स्वतंत्र अध्ययन है, और क्योंकि इन दोनों ने ही यह प्रश्न उठाया नहीं अतः उन्होंने इसे यहाँ चर्चा की योग्य नहीं समझा। यदि ध्यान से देखें तो लगेगा कि उपर्युक्त मान्यता के पीछे विवेचन नहीं बल्कि एक सीधे सरलीकरण का मोह है, जिसे चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोई साहित्यिक युग समय की दृष्टि से आगे बढ़ता है त्यों त्यों उसमें कला चेष्टा गहरी होती जाती है और वैचारिक क्षमता लोक विमुख होती जाती है। कबीर से लेकर जायसी, सूर, तुलसी तक के काल में आलोचक इस मान्यता को चरितार्थ देखना चाहता है। इस मान्यता के पीछे जैसा कहा गया साहित्य का संश्लिष्ट रूप आहत हुआ है। कबीर और जायसी कला की दृष्टि से सूर और तुलसी से हीन है, यह कहना न इन रचनाकारों के प्रति न्याय है और न कला की धारणा के प्रति ही। कबीर की रचना में कितने रंग हैं, अक्खड़, समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी पूरी संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है, इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। कबीर का आधुनिक मूल्यांकन करने वाले को कहीं यह प्रतीत नहीं होता कि उनमें कला तत्व क्षीण है। उनकी नाराजगी या कि तन्मयता उनकी भाषा में एक बार की समूची उपजी है। ठीक ऐसी ही स्थिति जायसी की है। यह अकारण नहीं है कि आचार्य शुक्ल तुलसी और जायसी का नाम साथ साथ लेते हैं, तब आलोचक की उपर्युक्त मान्यता हमारे लिए बहुत संगत नहीं रह जाती, सिवा इसके कि कुछ पहले से बने विचार के खानों में इन कवियों को खेल के तौर पर बैठाला जाए। उपर्युक्त चारों कवियों के वैशिष्ट्य को परखें तो यह जरूर दिखेगा कि इस अनुक्रम में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की प्रतीति उत्तरोत्तर हल्की पड़ती गई है। कबीर या उनसे पहले से चलें तो चंद से लेकर तुलसीदास तक, इसका उल्टा अनुपात कला चेष्टा से नहीं भक्ति की सघनता से मिलेगा। जैसे जैसे यह द्वंद हल्का पड़ता गया है तैसे तैसे भक्ति भावना सघन होती गई है, या इसे उलट कर भी कहना संभव है तो मध्यकालीन भक्ति काव्य के उदय में इस्लाम की आक्रामक परिस्थिति का गुणात्मक योगदान है। इसे कई कोणों से देखा और समझा जा सकता है और ऐसा मानने में कोई साहित्यिक, सामाजिक या कि ऐतिहासिक संकोच की बात भी नहीं जान पड़ती। बड़े कवि की एक पहचान यह हो सकती है कि कविता उसे अपने युग की संवेदना से बनाई है या नहीं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में युगीन संवेदना के विविध रूप देखे जा सकते हैं। कभी यह राजाओं के आंतरिक संघर्ष के अनुभव रूप में थी, कभी बाह्य आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों की समझ के रूप में। यह वह समय था जब काव्य का नायक राजकुल में उत्पन्न कोई धीरोदात्त व्यक्ति ही हो सकता था। फिर व्यापक जन जागृति के रूप में भक्ति की पृष्ठ संख्या 39 चेतना विकसित होती है, जो कालांतर में आस्था के क्षीण पड़ने पर राधा कृष्ण की श्रृंगार चेतना में परिणत हो जाती है। आदिकालीन राजकीय संरक्षण में राजा की वीरता और विलास दोनों कवि के उपजीवे थे। इस बार का संरक्षण सिर्फ श्रृंगार चित्रण के लिए उत्साहजनक था। आधुनिक युग की राष्ट्रीय चेतना भारत से आरंभ हो जाती है, जो छायावाद के साथ सूक्ष्म पर व्यापक जागरण और चैतन्य भावना का रूप ग्रहण कर लेती है। इस युग का शक्ति काव्य भारतीय पुनर्जागरण चेतना से सीधे जुड़ा है और समूचे राष्ट्रीय संदर्भ में अतुलनीय है। अब आज के कवि के सामने राष्ट्रीयता का एक सीमित पक्ष राजनीति के रूप में बहुत कठोर कच्चा माल है, जिससे कविता बनाना कवि कर्म के लिए निश्चय ही बड़ी चुनौती है।